या प्रोशन लोक अध्यक्ष के द्वारा 14 अक्टूबर 2012 संडे लव फिश
का मुंह को खींचकर पानी तक टच किया। अब और कितना करेंगे, अब पानी तक टच किया लेकिन पानी खींचना तो घोड़े को ही पड़ेगा ना, और कितना कह सकते हैं। घोड़ा पानी को मुंह टच करने के बाद भी नहीं खींचेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रभुपाद जी ने इतना सुविधा किया और उसके बाद भी अगर हम भक्ति में नहीं आएंगे, हम उनके उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, हम भक्ति सेवा साधन नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए संत और क्या कर सकते हैं। वास्तव में भाग्यशाली जीव है जो इस प्रकार आते हैं और सुविधा का लाभ उठाकर अपने जीवन को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको प्रभुपाद जी का प्रसाद
कभी आप भी अपने चारों पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले धर्म या धर्मराज या यमराज हैं। ऐसे नियम सतयुग में पूरी तरह काम करते हैं, त्रेता युग में इनमें एक चौथाई कमी आ जाती है, द्वापर में आधी कमी आ जाती है और कलयुग में ये एक चौथाई ही रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाते हैं। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में धार्मिक नियमों के पालन के अनुसार सुख फैलता है या जनता सुखी रहती है। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए, विश्व में धर्म के नियमों के पालन के अनुसार सुख फैलता है। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम लौट सकता है। ओम अज्ञानते निरांधस्य चतुर्भी वर्तसे ये न पाद लोक सुखावहे। तो पहले इस थोड़ा प्रसंग का आस्वादन करेंगे। यह श्लोक वैसे तो शब्द आया है धरण्यु वाचन। धरण्यु का अर्थ होता है धरणी, जो सबको धारण करती है, माता पृथ्वी। इसके कई नाम हैं, मही, पृथ्वी, वसुंधरा है, धरणी। वसुंधरा नाम भी इस श्लोक में आया है आगे, वसुंधरा का अर्थ होता है सभी धन की खान, जितना भी संसार में धन है वो माता पृथ्वी से उपादेय होता है। लेकिन यहाँ पर माता पृथ्वी ने गाय का रूप लिया है और वृषभ अर्थात बैल ने जो धर्म है उन्होंने बैल वृषभ का रूप धारण किया है और दोनों का ये वार्तालाप है जो श्रीमद् भागवतम में बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। ये उस समय की घटना है जब महाराज युधिष्ठिर ने यह अनुभव किया या उनको यह पता चला कि हमारे प्रियतम, हमारे बंधु, हमारे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर स्वधाम लौट चुके हैं। जब यह समाचार महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन के द्वारा प्राप्त हुआ तो उसी समय महाराज युधिष्ठिर भगवान के विरह वेदना का अनुभव करने लगे और उसके बाद महाराज परीक्षित को यह पता चला कि कलयुग का आगमन हो चुका है, और कलयुग अब हमारे राज्य में भी प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है। कलयुग हमारे राज्य में प्रवेश करेगा, उसके बाद हमारी राजधानी में प्रवेश करेगा, उसके बाद हो सकता है हमारे परिवार में भी प्रवेश करे और उसके बाद हो सकता है हमारे भाइयों में भी प्रवेश कर जाए और हमारे प्रभु जो हमारे रक्षक थे वो तो धराधाम छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार भगवान के विरह में और कलयुग के आगमन की सूचना प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर तत्क्षण सावधान हो गए। उन्होंने तुरंत अपने मुकुट को त्याग दिया, गूंगे और बहरे बन गए, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और उसके बाद चीथड़े पहनकर किसी को भी बिना बताए घर से निकल गए। अपने मन को पूर्णतया कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित करके और वो घर से निकल गए। यह प्रश्न होता है कि महारानी कुंती जिन्होंने इनका इतना साथ दिया दुख में, विपत्ति स्थिति में, द्रौपदी ने इतना इनका सहयोग किया, चार भाई हमेशा इनके अनुगामी रहे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर किसी को भी कुछ भी कहे बिना घर से निकल गए। और जब उनके दूसरे भाइयों ने, भीम ने, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने देखा कि हमारे भ्राता घर त्याग कर निकल चुके हैं तो वे भी कलयुग को आता देखकर और भगवान कृष्ण के विरह का अनुभव करके उन्होंने भी उनके अपने भाई का अनुगमन किया। अनुगमन किया का अर्थ है कि एक भाई ने ना दूसरे भाई को बताया, ना किसी ने द्रौपदी को बताया, ना कुंती महारानी को बताया, वे भी उसी तरह निकल गए। एक महाराज से मैं सुन रहा था कि जब महाराज युधिष्ठिर ने मुकुट छोड़ दिया और महाराज परीक्षित को मुकुट दे दिया और वो निकल गए तो अर्जुन अपने बाण की प्रपंचा को चढ़ा रहे थे, टिंग टिंग ऐसा गांडीव की प्रपंचा को चढ़ा रहे थे और उसने देखा कि महाराज युधिष्ठिर चुपचाप बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे चुपचाप चल रहे। उन्होंने अपने धनुष को छोड़ दिया, देखा कहाँ जा रहे हैं, तो पीछे पीछे अर्जुन भी अपना राजसी वेश त्याग करके उनके पीछे पीछे चल रहे। उस समय भीम अपनी गदा को पॉलिश कर रहे थे, चमचमा रहे थे, तो चमकता चमकाते हुए देखा कि अरे ये अर्जुन कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गदा को भी पॉलिश करते हुए छोड़ दिया और वो भी उनके पीछे पीछे। नकुल सहदेव कुछ वेदाध्ययन कर रहे थे, उन्होंने देखा ये सब भाई कहां जा रहे हैं, वो भी चल गए। ना एक दूसरे ने किसी को बताया और ना एक दूसरे ने किसी का कुछ सहायता किया। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिखते हैं कि इस विषय में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। व्यक्ति को संसार से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति पैदा करनी है या अपने मन को बिल्कुल कृष्ण के चरण कमल में लगा देना है, ध्यानस्थ हो जाना है तो, और इस संसार से विरक्त हो जाना है तो इसमें अपने आप को स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ती कि कैसे हम संसार से मोह माया और आसक्ति से मुक्त हो जाएं और किस प्रकार हमारा मन कृष्ण में आविष्ट हो जाए और किस प्रकार हम भगवत धाम को प्राप्त कर लें। तो इसके लिए व्यक्ति स्वयं को उत्तरदायी रहना, इसमें किसी का कोई सहायता या किसी के आश्रय पर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद महाराज एक उदाहरण देते हैं अपने टीका में कि जिस प्रकार वायुयान हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो आकाश में जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं तो आकाश में उड़ाने हवाई जहाज उड़ाने वाला दूसरे हवाई जहाज की परवाह नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता या उसके बारे में विचार नहीं कर सकता। दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा है तो वो उसके बारे में या उसकी कोई रक्षा या उसकी सहायता नहीं कर, वो अपने जहाज को अपनी सुरक्षा करना पड़ता है। या समझो दूसरे जहाज का कुछ गड़बड़ हो गया, मशीन खराब हो गया तो वो कोई सहायता नहीं कर सकता वहां पर उस स्थिति में। हाँ, सहायता करता है जब तक वो पृथ्वी पर है। तो हम जब तक साधन भक्ति में हैं तो हम हमारे लिए गुरु कृपा करते हैं, वैष्णव कृपा करते हैं, सबके सहायता का, सबकी सहयोग का हमको सारा लाभ मिलता है। लेकिन अपनी रक्षा करना और अपने भगवत प्राप्ति के लिए संसार का वैराग्य करने के लिए तो व्यक्ति को स्वयं तैयार होना चाहिए। जैसे मैंने घोड़े का उदाहरण दिया, सब सहायता उतना तक कर सकते हैं कि आपको नदी के कांठे तक ले जाते हैं, लेकिन पानी को खींचकर पीने में घूंट लेने में कोई सहायता नहीं कर सकता, वो तो स्वयं को ही करना है। प्रभुपाद महाराज ने इतना व्यवस्था किया, मंदिर बनाए, शास्त्र भी दिए, शास्त्रों को सार को कोटेशन के रूप में दिया, इतना सब कर दिया, लेकिन उसका अध्ययन करना और जीवन में पालन तो हमको करना पड़ेगा, वो हमको करना है। फिर कहे कि नहीं हमारे लिए हमारा जब भी गुरु कर देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो स्वयं को करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि हमने गुरु बना लिया, अब जब करने की क्या आवश्यकता, ऐसे हैं, हमने देखा है। श्रीनाथ जी प्रभु हंस रहे हैं, उनके पहचान वालों में ऐसे लोग हैं कि अब गुरु बना दिया, अब हमको कि नहीं, इस विषय में साधना के विषय में व्यक्ति को अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए सहायता। तो इस प्रकार ये पांचों पांडव द्रौपदी उनको बिना बताए निकल गए। जब को इनको इस प्रकार देखकर द्रौपदी ने भी और सुभद्रा ने भी अपने आप को, अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाया और उनके जैसा ही गति उन्होंने भी प्राप्त किया। इस प्रकार ये प्रसंग होने के बाद इसमें श्रीमद् भागवतम के जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि महारानी कुंती ने जो प्रार्थना की और उसमें जो एक श्लोक है वो बड़ा अद्भुत आश्चर्यजनक श्लोक है, विपदा संति ता शाश्वत, कि हे प्रभु हमारे जीवन में विपदा शाश्वत रहे। ऐसा किसी ने भगवान से नहीं मांगा लेकिन कुंती महारानी ने मांगा। लेकिन कुंती महारानी ने उस प्रसंग में भगवान से और भी एक वस्तु मांगी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके 38वें श्लोक में कुंती महारानी, जब भगवान ने कहा कि हे माता भुआ अब मुझे आज्ञा दो, अब आपको पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो चुका है और अब आपको कष्ट देने वाला कोई नहीं, आप राज्य सुख का भोग करो, तो उसमें कुंती महारानी ने कहा भगवान के वयम रूप नामाभ्याम, हे कृष्णा हमारी क्या औकात थी कि हम इस महाभारत को जीत पाते, हमारी क्या क्षमता थी, के वयम रूप ना, हमारी क्या योग्यता थी, ये तो आप हमारे साथ थे करके हम जीत गए। बाकी संसार को मैंने देख लिया, यहां पर कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ है और सब क्लेश और दुख में पड़े हुए हैं इस संसार में, कोई आप कहते हो सुख भोग करो, आपके सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है। ये आसक्ति मोह माया में पड़कर जीव बिल्कुल उलझा हुआ है। इसलिए मेरे आप जाने से पहले आपके चरणों में मेरी एक और प्रार्थना है कि मेरी आसक्ति वृष्णिवंशियों में भी है और कुरुवंशियों में भी है। कुरान कुंती महारानी का दो जगह शब्द था, वृष्णिवंशी वसुदेव के जो वंशज हैं, वसुदेव जी के परिवार में, अपने मायके के परिवार में और अपने ससुराल के परिवार में हैं, कुरुवंश में और वृष्णिवंश में, दोनों में ये प्रभु मेरी आसक्ति है, मेरा स्नेह है। आप जाने से पहले मेरे ये दोनों वंशों के स्नेह के बंधन को काट कर जाइए। ये विपदा शब्द शाश्वत से भी ये बड़ा मांग रहे हैं। हमारी आसक्ति, हाँ कोई मांगता है कि हमारी पत्नी से, हमारे बेटे से, हमारी दुकान से हमारी आसक्ति काट दो? कोई मांगा भगवान से? ये कुंती महारानी कितनी महान वैष्णव है, महान वैष्णव कितनी महान भक्त है, भगवान से मांगा कि आप वृष्णिवंशियों के प्रति जो मेरा आसक्ति है उसको भी काट दीजिए, वो बंधन भी काट दीजिए, और जो कुरुवंश में मतलब हमारे पुत्रों में जो हमारी आसक्ति है उसको भी काट कर जाइए। तो भगवान पूछे आप उनको क्यों काटना चाहती हैं? आप काट दीजिए जिससे मेरा मन आपके चरणों में इस प्रकार दौड़कर आपके चरणों को पकड़ ले जिस प्रकार हिमालय से निकली हुई गंगा उबड़ खाबड़ कितने भी स्थानों में रहती हुई, कितने भी मोड़ होते, कितने खड्डे आते, कितना उबड़ खाबड़ पर्वत मोड़ खड्डा को पार करते हुए सीधी जाकर सागर में मिलती है, कहीं अटकती नहीं है। इसी प्रकार आप मेरी आसक्ति काट दीजिए ताकि मेरा मन कहीं अटके नहीं और मेरा मन सीधा उस गंगा की तरह आपके चरण कमल में ही समा जाए, वो आसक्ति। इसलिए मेरी हमारा मन बहुत बहुत आसक्त रहता है इधर उधर, इस आसक्ति को काटे बिना, मिटाए बिना नहीं, काटे बिना, मोड़े बिना, आसक्ति रहेगा, आसक्ति नहीं जा सकता, लेकिन उसको बदलना चाहता है। इतनी ऐसी ही आसक्ति आपके, ये कह रही है कुंती, वहां से आसक्ति छुड़वाइए और ये आसक्ति आपके चरण कमल में हो जाए। और गंगा का उदाहरण देती है, गंगा हिमालय से निकलती हुई है, गोमुख से निकलती हुई, कितने पहाड़ आते हैं, कितने मोड़ आते हैं, कितने शहर नगर आते हैं, कितने घाट आते हैं, लेकिन कहीं रुकती नहीं है, सीधी जाकर समुद्र में मिलती है। इस प्रकार हमारे कई संबंधी हैं, कई बंधु हैं, कई मेरा वृष्णिवंशियों में प्रेम है, मेरे पुत्रों में प्रेम है, और भी समाज में प्रेम है, दुकान में प्रेम है, लेकिन आप इन सबको ऐसे काट दो कि मेरा मन उस गंगा की तरह सीधा आपके चरण कमल में समा जाए, ये कुंती महारानी ने मांग रखा है। तो ये बिल्कुल इसके अनुकूल ये प्रसंग है, ना पांडवों ने या युधिष्ठिर या अर्जुन ने कुंती महारानी से कुछ पूछा और ना द्रौपदी से पूछा, ना भगवान आसक्ति बिल्कुल काट। ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रसंग है, इससे हमको शिक्षा लेना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर और पांडव महाराज दीक्षित को राज्य देकर अपना मन बिल्कुल कृष्ण में लगा कर राज्य को त्याग कर चले गए, उत्तर दिशा में हिमालय में चले गए, और भगवान में अपना मन स्थिर करके वे अपने अपने गंतव्य को प्राप्त किए। और उसी समय प्रभास में भी हमारा विदुर जी ने भी प्रभास में अपने शरीर को त्याग दिया उसी घटना काल में, और उसके बाद महाराज परीक्षित राजा बने। तो महाराज परीक्षित राजा बनने के बाद महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के उद्देश्य से अपने राज्य में भ्रमण करने लगे। दिग्विजय क्या अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी करते हैं कि राजा का ये कर्तव्य होता है, जो पहले जो राजा होते थे वो अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, इससे वे अपने देखते थे कि अपने राज्य में शासन किस प्रकार चल रहा है, प्रजा की क्या स्थिति है, इसका मुआयना करने के लिए राजा इस प्रकार प्रजा का राज्य में भ्रमण करते थे, कभी कभी गुप्त वेश में भी भ्रमण करते थे, जैसे हम देखते हैं भगवान राम अपने राज्य में दौरा करते थे, प्रजा किस प्रकार है, हमारा शासन किस तरह चलता है, हमारे शासन में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई शिकायत तो नहीं है, इस प्रकार स्थिति देखने के लिए राजा लोग गली गली में इस प्रकार घूमते थे। आज के राज प्रधानमंत्री या राजाओं जैसा नहीं कि आएंगे तो 10 गाड़ी होगा, जनता को पता ना चले कि कौन सी गाड़ी में है क्या है, सिक्योरिटी कोई कोई प्रजा का साधारण व्यक्ति उनकी नजदीक ना आने पावे, ऐसा कोई मिलने ना पावे हैं, तो लोग दूर से ही जूता फेंक देते हैं, ऐसा स्थिति है। लेकिन जब महाराज परीक्षित इस तरफ दिग्विजय करने के लिए निकले तो वे भ्रमण कर रहे थे पूरे पृथ्वी में, और उसका इतना सुंदर वजह पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने राज्य में देखा कि चौराहे पर या कहीं लोग इकट्ठा होकर कुछ बात कर रहे हैं, जैसे आजकल करते हैं, हम देखते हैं रेल की पटरी पर लोग बैठकर बात करते हैं, कहीं कहीं बगीचों में वृद्ध लोग बैठकर बात करते हैं, लेकिन वे इतनी थर्ड क्लास बातें करते हैं बैठे बैठे, क्या हो गया इनके हैं, पटरियों पर बैठे बैठे नेताओं की बात करते हैं, अभिनेताओं की बात करते हैं, अखबार में आया है उसकी बात करते हैं, लेकिन हमने सुना आप खड़े रहकर देखिए कोई भी भगवान की चर्चा नहीं करते, फ्री बैठे बैठे भी प्रजल्प करते हैं और अपने नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित के शासन काल में जब महाराज परीक्षित भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि जहां भी वो सुन रहे हैं तो लोग कृष्ण और कृष्ण भक्तों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और विशेषकर वृष्णिवंशी और कुरुवंशी या पांडववंशी प्रथावंशियों के बीच में क्या संबंध था, पांडवों और भगवान कृष्ण के बीच में कितना संबंध रहा, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने पांडवों की सहायता की और पांडव भी किस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह रखते थे, ये सब चर्चाएं लोग जहां तहां बैठे होटलों पर इधर उधर बैठे बैठे ये चर्चा करते और महाराज परीक्षित सुनते थे। महाराज परीक्षित ने यहां तक चर्चा सुना कि भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से किस प्रकार हमारे महाराज परीक्षित की रक्षा किया, ऐसी चर्चा लोग करते थे गलियों में इधर उधर बैठे बैठे, कोई अखबार नहीं पढ़ता था, कोई टीवी वीडियो या प्रधानमंत्री किसी का थड़कला कोई प्रचल पर नहीं करती, इस प्रकार की चर्चा करते थे, और इस प्रकार की चर्चा सुनकर महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे। वो सुनते थे कि कृष्ण ने उनका किस प्रकार रक्षा किया था तो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ जाता था। फिर आगे बढ़ते थे तो रात्रि हो जाती थी तो कई जगह पर ड्रामा चलते थे, जैसे आजकल घर घर में दूरदर्शन चलता है ब्लैक बॉक्स, पहले भी ये था लेकिन पहले ड्रामा चलते थे, तो ड्रामा भी देखे उन्होंने, नाटक चल रहे हैं तो नाटक में दिखाते थे, महाराज परीक्षित रथ अपना खड़ा करके देखते थे तो ड्रामा हो रहा है तो ड्रामा में दिखा रहे हैं महाराज परीक्षित, देखते हैं सुखदेव गोस्वामी कि सारथ्य पार्षदम सेवन साख्य दोतन दोत्यम वीरासनानुगमन स्वन प्रणामान। महाराज परीक्षित ने देखा ड्रामा चल रहा है नाटक, तो कैसा चल रहा है, किस प्रकार सारथ है, किस प्रकार भगवान कृष्ण पांडवों के सारथी बने, ये ड्रामा किया जा रहा है, सारथ्यम वो देखा रहे ड्रामा में, और सारथ्यम पार्षदम किस प्रकार वे उनके पार्षद बने, पार्षद का अर्थ है जब राजसूय यज्ञ किया तो राजसूय यज्ञ में किस प्रकार वे उनके अग्रणी बने, सभा अग्रण पूजा जो भगवान की गई तो उस राजसूय यज्ञ में कृष्ण अग्रणी होकर उनके पार्षद के रूप में अग्रणी बने, वो ड्रामा में दिखाया जा रहा है। और भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथ्य किया, और सेवन किस प्रकार सेवा किया है, अग्र पूजा उनकी हुई लेकिन वे ही राजसूय यज्ञ में सेवा भी किया है, पतंग उठाते थे, जो भी राजसूय युग में अतिथि ऋषि मुनि आते थे उनके पांवों को धोते थे, ये पांडवों की किस प्रकार सेवा किया ये दिखाते थे। साख्यम किस प्रकार वे अर्जुन के साथ सखा भाव में रहे, अर्जुन उनके कंधे पर हाथ देकर चलते थे, साथ साथ में सोते थे, आपस में विनोद करते थे और साथ में चलना साथ में सोना, मतलब एक मित्र फ्रेंड, मित्रता किस प्रकार कृष्ण ने साख्यम निभाया, दोस्ती निभाई है, और प्रणामान। प्रणामान का अर्थ है कृष्ण किस प्रकार प्रणाम करते थे। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से उम्र में बड़े थे, तो कृष्ण हमेशा पांडवों के साथ चलते थे, उसमें अगर युधिष्ठिर महाराज या भीम साथ में है तो कृष्ण पीछे चलते थे, पांडवों के आगे नहीं चलते क्योंकि वो बड़े हैं। आजकल तो ये सब संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, हैं? हम छोटे तक तो देखते थे कि बड़ा भाई है तो उसके आगे छोटा भाई नहीं चलता, छोटा भाई पीछे चलता था, या पिताजी आगे चल रहे हैं तो बेटा पीछे चलता था, हैं? माँ आगे है तो बेटी पीछे, सास आगे है तो बहू पीछे। पहले के समय में ये बहुत संस्कार हैं। एक बार महाराज एक बार एक कथा सुना रहे थे तो उसमें सुनाया कि एक बेटा था जो पागल हो गया, घर से भाग जाता था, तो घर से भाग जाता था तो उसके पिताजी ढूंढ ढूंढ के लाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो बेटा को ले आ रहे, बिल्कुल सत्य घटना है, तो बेटा पीछे चलता था पिताजी आगे चलता, ऐसा नियम था, तो वो पागल था फिर भी वो पीछे ही चलता था, तो पिताजी आगे चलते थे तो पीछे चलने वाला बेटा बीच में बैठ जाता था, पिताजी आगे निकल गए, पीछे देखा तो वो बैठ गया है, वो चल नहीं रहा है, तो पिताजी आएगा तो चल तू आगे चल, आगे चल तू पीछे बैठ जाता है, तो वो पागल लड़का भी बोलता तो क्या मैं पिता बन जाऊं, मैं आगे चलूं तो मैं पिता बन जाऊं क्या। कहने का अर्थ है कि पहले के पागल लोग भी जानते थे इस किस प्रकार सम्मान देना, किस प्रकार बड़ों को सम्मान देना है, है? आजकल तो हम ट्रेन में देखते हैं 25 साल का जवान चिपके बैठा है और बेचारा 60 साल का खड़ा है, लेकिन कहता नहीं है चर्च गेट से मीरा रोड तक कि आप बैठ जाइए मैं खड़ा हो जाता हूँ, देखा हमने अपनी आंखों से, अरे बुड्ढे चल इधर खिसक, ऐसा बोल दो, कोई संस्कार नहीं, कोई नियम नहीं, कोई पावन नहीं। ये सब बातें आगे आगे माता गो माता पृथ्वी कहती है धर्म से, और धर्म भी कहते हैं कि ऐसा समय आने वाला है, इसलिए आप दुखी हैं क्या। तो लेकिन भगवान कृष्ण जो युधिष्ठिर महाराज चलते थे उनके पीछे पीछे चलते थे, कभी आगे नहीं चलते, और कभी कभी व्यक्ति पीछे चलता है लेकिन उसके विचार आगे चलते हैं, तो भगवान ऐसे भी नहीं थे, हमेशा महाराज युधिष्ठिर का सम्मान करते थे, उनको प्रणाम करते थे, इतना समझ। और विरासना, विरासना, विरासन पर भगवान पहरा देते थे, जब सारथी बने तो पूरा दिन बहुत थक जाते थे भगवान, रथ चलाकर बहुत मेहनत करते थे, रथ चलाया उसमें भगवान ने, बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम करते थे, पितामह भीष्म की स्तुति में आपने सुना होगा, इतना परिश्रम करते थे कि मुंह पे पसीने की बूंदें आ जाती थी, और जब रथ चलता था तो खुर से जो धूल उड़ती थी वो धूल के कण मुंह पे गिर जाते थे, और पानी की बूंद जो पसीने की बूंद है उसमें लग जाते थे, लेकिन भगवान को समय नहीं मिलता था पसीना पहुंचने के लिए। कैसे पहुंचे, एक हाथ में घोड़ों को हांकने के लिए चाबुक रहता था और एक हाथ में घोड़ों की लगाम रहती थी, और सामने से आने वाले बाणों से अर्जुन की रक्षा करना, बाण आ रहा छूट गया तब तक तो रथ को इधर घुमा देना है, रथ को नीचे दबा देना है, उधर घुमा देना है, ऐसे कर देना, पीछे से अर्जुन भी कभी कभी घुटन मार देते थे, कभी कभी कोणी से मारते थे, इधर चलो उधर चलो, ऐसा बाणों से रक्षा करना है, इस प्रकार भगवान इनके बाणों से बचा बचा कर रथ को चलाते, बहुत बहुत सामर्थ्य थे, अब भगवान सारथी बने हैं तो क्या बात करना है। तो इस प्रकार भगवान तो इस प्रकार करते करते थक जाते थे, पसीना मतलब आ जाता था, कभी कभी उनकी जो केश बड़े घुंघराले बड़े बड़े होते तो वो हवा से उड़कर आगे आ जाते थे, और केस ऐसा होता था कभी पसीना केसों से पहुंच जाता था लेकिन हाथ से नहीं पहुंचते। इस सौंदर्य को पितामह भीष्म ने स्मरण किया है अंतिम समय में कि वो सौंदर्य मेरे आंखों के सामने रहे और मैं शरीर छोड़ू हरिदास ठाकुर के जैसा। तो इस प्रकार थक जाते थे, लेकिन शाम को अर्जुन रथ से उतर जाते थे तो भगवान ऐसा हाथ पकड़कर अर्जुन को रथ से नीचे उतारते थे, अर्जुन नीचे उतर कर चले गए अपनी छावनी में जाकर रेस्ट करते थे। भगवान घोड़ों को छोड़ते थे, रथ को देखते थे, रथ का देखभाल करते थे, घोड़ों को घास खिलाते थे। अब रात्रि हो गया, पांडव सो रहे हैं, तो भगवान उनके जो पंडाल बने हुए थे उसके चारों तरफ नंगी खुली तलवार लेकर रात्रि भर पहरा देते थे। ये ड्रामा में दिखाया जा रहा है। महाराज परीक्षित का कितना प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता होगा कि हमारे वंशजों के साथ कितना स्नेह था भगवान। इस प्रकार महाराज परीक्षित स्तब्ध होकर देखते थे। ये बहुत शिक्षाएं इन्होंने। ड्रामा देखना, टीवी देखना, पिक्चर देखना, ये ठीक है, हमारा स्वभाव है, लेकिन उसमें क्या देखना। आजकल के लोग आप देखते हैं, हमारे बच्चे भी कभी कभी जाते हैं तो एक सीरियल बनाते हैं। एक आदमी बिल्कुल थर्ड क्लास दिमाग वाला अपनी मन घड़त बातों को लिखता है, मन घड़त बात, उसमें सत्य बिल्कुल नहीं है, उसको लिखता है और लिख कर एक बिना चरित्र वाला व्यक्ति उसको ढालता है, एडिटिंग करता है और फिर उसमें कलाकार काम करते हैं और उसको फिर प्रस्तुत किया जाता है तो लोग देखते हैं। एक तकनीका को मैं कहता हूं ये सब मनगढ़ंत और झूठी बातें हैं, आप लोग क्यों देख रहे हैं। टीवी या पिक्चर जो हम लोग देखते हैं हमारे बच्चे, उनको बताओ कि ये एक आदमी ने अपना मनगढ़ंत एक ड्रामा तैयार किया है, मनगढ़ंत, उसमें सत्य कुछ भी नहीं, और ये लोग जो पात्र निभा रहे हैं ये भी सब गड़बड़ वाले हैं, इनका भी कोई चरित्र नहीं है। पहले के लोग जो पात्र करते थे तो उनके चरित्र भी बहुत उज्ज्वल होते थे। कोई ड्रामा में राम का रोल कर रहा है या युधिष्ठिर महाराज का, तो वो चरित्र से भी बहुत अच्छे होते थे और भक्त होते थे। लेकिन आजकल इस प्रकार हमारे बच्चे और वो टीवी देखते हैं और टीवी में हाँ बहुत अच्छा सीरियल है, क्या अच्छा है, सब तो झूठ है उसमें। यहाँ जो ड्रामा दिखाया जा रहा है कि कृष्ण किस पर विरासन में पहरा दे रहे हैं, किस प्रकार सारथ्य कर रहे हैं, किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के पीछे चल रहे हैं, ये तो सब सत्य है, देखना चाहिए, लेकिन सत्य को देखो ना। आप झूठ मन घड़त बनाया हुआ एक बात को क्यों देख रहे हैं, वो तो सब झूठा है। सीरियल बहुत अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, हमारा स्वभाव कैसा हुआ मालूम है। एक स्टेज पर एक शो चल रहा था तो एक कुत्ता आया और कुत्ता आकर स्टेज पर भौंकने लगा भौं 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 भौं, तो लोग खड़े हुए, लाठी पत्थर लिया, भगाओ इसको, भगाओ, मारो मारो, और मार के भगा दिया। फिर कुछ देर के बाद उसी स्टेज पर एक कलाकार आया और कलाकार आकर भौं 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 ऐसा भौंकने लगा तो लोग ताली बजाने लगे। तो वो ओरिजिनल जो भौंक रहा है उसको तो भगा रहे और जो डुप्लीकेट कर रहा है उस पर ताली बजा रहे। ये हमारा स्वभाव हो गया, हम डुप्लीकेट में ताली बजाते, ओरिजिनल आकर भौंका तो भगाओ उसको, और डुप्लीकेट में कुत्ते जैसा ही आवाज निकाला आदमी ने तो ताली बजाओ, बहुत अच्छा। अरे डुप्लीकेट पसंद आया और वो असली भौंका वो तो पसंद। एक बार आपने सुना होगा अमेरिका में एक कंपटीशन हुआ, कौन था डांसर, माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन का कंपटीशन हुआ तो इसमें सब लोग माइकल जैक्सन जैसा बन रहा है, ऐसा वेशभूषा, ऐसा बाल, ऐसा, और कंपटीशन में भाग लिया। तो उसमें चुपके से माइकल जैक्सन भी आया, वो भी भाग लेने के लिए आया। कंपटीशन शुरू हुआ तो कोई जान नहीं रहा ये माइकल जैक्सन, सब ऐसा बन कर आए तो क्या पता चले, जैसे कलयुग में है ना, सब भगवान बनकर आ गए हैं, तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि असली भगवान कौन है ना। वो बाबा भी भगवान, वो बापू भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, तो समझ रहे हैं सब भगवान है, पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा उसमें पता नहीं चला कि असली माइकल जैक्सन कौन। तो कंपटीशन चालू हुआ, सब नाचे, फिर जो जज थे उनका जजमेंट देने लगे, तो जो माइकल जैक्सन था उसका तीसरा नंबर आया ओरिजिनल का, और पहला और दूसरा जो डुप्लीकेट थे उनका नंबर आया, पहला नंबर जो डुप्लीकेट था। आजकल ऐसा स्थिति है, डुप्लीकेट भी पहले नंबर आए हैं, भगवान में भी ऐसा है, जो डुप्लीकेट भगवान बन के बैठे हैं उनका पहला नंबर है, पहला नहीं दूसरा तो है ही। तो इस प्रकार हम लोग हो गए हैं बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित ने देखा कि कृष्ण और पांडवों में कितना स्नेह था और किस प्रकार भगवान कृष्ण ने उनके साथ उनका सेवा किया, तो उसका वो देख रहे थे। सन्निधिक्षु पांडुषु जगत कर्ण तम च विष्णु, महाराज परीक्षित सोचने लगे, सन्निधिक्षु पांडुषु जगत प्रणीतम च विष्णु, जिनको सारा जगत प्रणाम करता है, और जिनकी आज्ञा का पालन, जिन भगवान की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन भगवान ने हमारे दादाओं की, पितामहों का किस प्रकार सेवा किया। वो उनके दूत बने, वो उनके सारथी बने, वो उनका विरासन पर पहरा देते थे। विरासन का अर्थ होता, वो रात को पहरा देते थे और पहरा देते देते जब बैठ जाते थे तो विरासन पर बैठते थे, वीरों का आसन, ऐसा पलाथी लगा कर, ऐसा नहीं हम प्रसाद देने, ऐसा नहीं। हनुमान जी बैठते हैं, देखा है हनुमान जी राम जी के आगे बैठते हैं, वो ऐसा क्यों बैठते हैं मालूम है? और कृष्ण भी ऐसा क्यों बैठते थे? हनुमान जी इसलिए बैठते हैं कि भगवान राम को हमारी सेवा की कब जरूरत पड़े तो उसमें देर ना होना चाहिए। तो ऐसा पलाथी लगा के बैठा है इंद्रधनुष महाराज जैसा, तो वो उठेगा नहीं ठीक से। तो उन्होंने श्राप दिया, हाथी बन जाओ, हाथी जल्दी नहीं उठता। लेकिन वीरासन वो ऐसा हनुमान जी जैसा आसन होता, आदमी को एक सेकंड में उठ जाता, एक सेकंड भी नहीं लगेगा उठने में। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, गोविंदा श्री गोपाल। तो भगवान कृष्ण भी पहरा देते समय वीरासन पर बैठते थे। हमारे पांडवों पर कब कोई आफत आ जाए, कब जरूरत पड़ जाए हमारी, तो वीरासन पर बैठने से तत्क्षण, देर नहीं होना चाहिए। ये भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों का। वीरासन पर बैठने देख कर ही महाराज परीक्षित का कितना स्नेह बढ़ जाता था, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाता था। हाँ, भक्ति करोति नरपति चरणारविंदे। उस नरपति महाराज परीक्षित का इस प्रकार के ड्रामा देखकर भगवान कृष्ण के चरणों में उनका भक्ति और बढ़ गया। भक्ति करोति नरपति चरणारविंदे, कृष्ण के चरणों में उनका प्रीति और बढ़ गया। जब इस प्रकार महाराज परीक्षित अपने राज्य में, तो सब लोग सुखी थे। क्यों? क्योंकि सब अपने धर्म का पालन कर रहे थे, सब कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा श्रवण में, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार सब भक्ति में मग्न थे, कोई भी दूसरा चर्चा प्रजल्प नहीं था। इसलिए महाराज परीक्षित के शासन का तुलना भगवान राम के राज्य के साथ किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर और महाराज परीक्षित का जो राज्य था वो भगवान राम राज्य के समान है, इतना तुलना किया जाता है। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित जब विचरण करते थे, विचरण करते करते उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यमय दृश्य देखा। क्या आश्चर्यमय दृश्य देखा? कि धर्म पद एके न चरण विच्छायाम अनुलभ्य भाम अनुलभ्य गाम प्रच्छति समाश्रु वंदना विवत्सामीव मातरम विवत्सामीव मातरम। उन्होंने देखा कि धर्म पद एकेन चरण, साक्षात धर्म जो बैल का रूप लिए हैं और एक पांव पर खड़े, धर्म पद एकेन चरण एक पांव पर खड़े हुए हैं, और विच्छयाम उपलभ्यम गाम, गाम मतलब गाय, गाय दुखी मुख से उनके उमा समा अश्रु वंदना। उस गाय जो पांव धर्म जो साक्षात बैल का रूप लिए है वो तो एक पांव पे खड़े हैं, और माता गाय जो है वो अश्रुपूर्ण आँखों को लेकर, अपने मुंह मलिन हो गया है, चेहरे पर चिंताएं हैं और आंखों में आंसू हैं, इस प्रकार दोनों जोड़ा गाय और बैल का उन्होंने देखा। इस प्रकार देखकर बिना बछड़े की, जैसे कोई गाय हो और उसका बछड़ा खो गया हो और उसके विरह में कैसे गाय बिल्कुल दुखी हो जाती, इस प्रकार गाय और जो बैल थे वो एक पांव पे खड़े थे, और उन्होंने प्रच्छति समा अश्रु वंदना, जो अश्रुपूर्ण मुख लिए हुए माता गाय खड़ी थी उनको प्रच्छति पूछा। किसने पूछा? उस बैल ने पूछा, धर्म उवाच, धर्म ने पूछा, कच्चित भद्रे नामयन आत्मनमस्ते हे, हे भद्रे हे देवी, कस्मिन मैं देख रहा हूं कि आप दुखी दिख रही हैं, आप स्वयं स्वस्थ तो है ना, प्रसन्न नहीं दिख रही है, आपका मुख मलिन है और शोक से, आपके मुख से शोक प्रकट हो रहा है, क्या है, आपका चेहरा काला पड़ गया है, क्या कारण है? हे माता, आप दुखी क्यों हो? क्या आपका कोई संबंधी, आपका कोई प्रिय, आपका कोई बंधु? दुरे बंधु चोससी कंचना अम्ब अम्ब, हे माता, दुरे बंधु, क्या आपको कोई रोग हुआ है, आप अस्वस्थ हो, या आपका कोई बंधु जो आपसे दूर हो गया है? दूरे बंधु चोससी, आपका कोई बंधु आपसे दूर हो गया, उसके लिए आप शोक कर रही हैं, आप दुखी क्यों हो? पादे न्यूनम सोचते एक पाप है, या आप मेरे इस दुख से दुखी हैं क्योंकि मैं एक पाव पर, मेरे तीन पाव नहीं रहे और मैं एक पाव पर खड़ा हूं, क्या मेरी इस दशा पर आप शोक कर रही हैं? देखिए बहुत सुंदर इस पर हमारे आचार्यों ने कहा है, धर्म बैल के तीन पांव कट गए और एक पांव पे खड़ा, कितना कष्ट में है, दुख में है कि नहीं है? हमारा एक पांव क्या, एक दांत भी गिर जाता है दुख में हो जाते हैं, किसी को पूछने नहीं हाल साल, अरे क्या पूछूं, मैं खुद मुसीबत में हूं। लेकिन यहां पर वृषभ जो है, बैल जो है, वो एक पांव पे खड़ा है, मतलब बहुत गंभीर विकट परिस्थिति में है, और वो माता गौ को पूछ रहा है कि हे माता, आप दुखी क्यों? ये विचारणीय प्रसंग है, ये मनन करने जैसे प्रसंग है। खुद आदमी मुसीबत में है, खुद आफत में फंसा हुआ, खुद संकट में है, और दूसरे को पूछता है कि प्रभु जी आप क्यों दुखी हैं, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये है महात्माओं का लक्षण, ये महात्माओं का लक्षण है, महापुरुषों का लक्षण है, स्वयं संकट में है और दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं, आप क्यों दुखी हैं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? वो तो सोच रहे क्या आप, मैं, मेरे तीन पांव कट गए इसलिए आप दुखी हैं? अरे आप अपने दुख का कारण बताइए, मेरे भले कटे तो कटे। ये देखिए महापुरुषों का, इनको देख कर याद आता है प्रभुपाद महाराज का। प्रभुपाद महाराज का 70 साल का आयु, पैसा नहीं, और जहाज में 2 हार्ट अटैक आए। प्रभुपाद महाराज जब जहाज में जा रहे थे तो उनको उल्टियां हो रही थी, जहाज ऐसा होता था ना, तो उल्टियां हो रही थी, जैसे हमको बस में होता है ना उल्टी, ऐसा। और हार्ट अटैक भी आया, एक नहीं 2 बार। फिर भी प्रभुपाद महाराज सोच रहे हैं कि वो नारकीय जीवन जी रहे हैं, उनका कैसे उद्धार किया जाए, उनको कैसे शिक्षा, भगवत शिक्षा प्रदान किया जाए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, हमारे गुरु का आदेश है, अपने बारे में कोई विचार, कहीं प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा कि मेरा हार्ट अटैक हो तो कोई डॉक्टर बुलाओ या ऐसा इलाज कराओ, अभी चलो मेरे को है। उसके बाद श्रीलंका आया था, जहाज में रुका तो ऐसा नहीं कहा कि अब श्रीलंका मेरे को छोड़ दो, मैं कुछ इलाज कराऊंगा, नहीं। वही लक्ष्य है कि उनका दुख दूर करना, अपनी स्थिति पर विचार ना करके दूसरों के दुखों को दूर करना, यह है वैष्णव का लक्षण, महापुरुष का लक्षण, महात्माओं का लक्षण। खुद की स्थिति नहीं देखते हैं, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहां पर यह है वास्तव में धर्म, इसको धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? दूसरों के दुखों को दूर करना, स्वयं संकट में होकर भी दूसरों के दुख, ये वैष्णवों का स्वभाव होता है, विष्णु भक्तों का ये स्वभाव होता है। भगवान नरसिंहदेव के सामने प्रहलाद महाराज ने कहा, नरसिंहदेव ने कहा मांगो मांगो, तो कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये संसार के लोग जो हैं ये सब दुखी हैं, हाँ क्लेश उठा रहे हैं, प्रभु आपको यहां से उनको ले जाने में क्या कष्ट है, सबको वैकुंठ ले जाओ है। नरसिंहदेव को बोलते आपको क्या कष्ट है, सबको यहां से बैकुंठ ले जाने में आपको कौन सा मेहनत करना, कौन सा ट्रेन भाड़े करना है, ले जाओ सबको। तो भगवान ने कहा अरे प्रहलाद तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, अरे मैं तो खुश हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो समझो भगवान पूछे कह रहे इन सबके पाप बाकी हैं, सबके कर्म बाकी हैं, वो है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा इन सबके पाप मुझको दे दो, मैं भुगतूंगा और इन सबको ले जाओ। एक हमारे चैतन्य महाप्रभु की लीला में वासुदेव भी बोलते संसार के सभी जीवों के पाप मेरे को दे दो, खुद दुखी थे, खुद को कोड हुआ था, परु निकल रहा है शरीर में से, और चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि सारे सबके पाप मैं ले लेता हूँ और सब पर आप कृपा करके ले जाओ। ये है महापुरुष वैष्णवों का स्वभाव। तो इस प्रकार खुद के तीन पांव कट गए, लेकिन माता पृथ्वी से पूछ रहा कि हे माता, आपके दुख का कारण जो जो कारण बताए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कारण बताए हैं कि आप, मैं एक पांव पे खड़ा हूँ इसलिए आप शोक कर रही हैं, या अब आने वाले कलयुग का समय आ रहा है और इसमें मांस भक्षक और चरित्रहीन व्यक्ति आपका भक्षण, आपका शोषण करेंगे, इसलिए आप शोक कर रही हैं। मतलब ऐसे ऐसे चरित्रहीन और दुष्ट मांस खाने वाले राजा शासक बनेंगे, शासक बने मतलब पृथ्वी का शोषण करेंगे, इनके लिए आप दुखी हैं, इनके लिए आप शोक कर रहे हैं, या इसलिए कि अब चलकर आगे लोग यज्ञ नहीं करेंगे और देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, इसलिए आप दुखी हैं, या अब कलयुग में आने वाले समय में बहुत ही अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, कई प्रकार के रोग निकलेंगे, इतना बारिश होगा, बाढ़ आ गई, 30 लाख लोग बह गए, उधर भूकंप आ गया, इतने लोग सांप हो गए, इतना परिवार वो हो गया, उनका घर चला गया, उनका बेटा चला गया, इस प्रकार जो प्रजा है, हैं? ये तो माता है ना, पृथ्वी तो माता है और गाय का रूप लिया तो वो भी माता है, तो इस प्रकार अपने बच्चों के आने वाले दुख को देखकर आप दुखी हैं। ये कलयुग में हो रहा है ना, लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे, पापाचार करेंगे, राजा मांस भक्षण होंगे, राजा कत्ल खानों की अनुमति देंगे, राजा जहां तहां कसाईयों का दुकान खोलेंगे, कत्ल खाने खोलेंगे, गाय तक का कत्ल होगा, जिसका विपरीत परिणाम आएगा, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, भूकंप होंगे और सामूहिक जीव हत्याएं होगी, और इस प्रकार का आने वाले जो मतलब आपकी संतानें आगे समय में दुख झेलेंगी, उस दुख का आभास करके आप दुखी। कितना सुंदर बात तो है। और भी बहुत पूछा है, क्या आप इसलिए दुखी हैं कि चरित्रहीन पुरुषों द्वारा उन स्त्रियों का शोषण करके स्त्रियों को छोड़ दिया जाएगा? ये भागवतम के शब्द हैं, बिल्कुल परम सत्य हैं। आजकल भले हमारा समाज ये नहीं देख रहा है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि आजकल जो ये युवा वर्ग हैं, बिल्कुल दिशाहीन हुआ है, कोई जाति पाति का, कोई समाज का, कोई अपने परिवार कुल का कोई ध्यान दिए बिना कोई भी कन्या, कोई भी युवती, कोई भी युवक किसी के साथ भी घूमते हैं, किसी के साथ भी हमारा गर्लफ्रेंड है, हमारा बॉयफ्रेंड है, ऐसा वैसा ये सब करते हैं, और करने के बाद इस प्रकार ऐसा कहा गया है कि अग्नि के पास अगर घी रखा गया तो वो पिघले बिना रहता नहीं है। तो इस प्रकार ये अवैध संबंध और अवैध मिलजोल के कारण बहुत ही व्यभिचार होता है, और पुरुष का ये स्वभाव होता है कि व्यभिचार के बाद वो स्त्रियों को छोड़ देता है, ये चाणक्य पंडित ने भी कहा। लेकिन आज का युवा वर्ग इसका आदि होता जा रहा है, इसके लिए इस नारी जाति को बहुत कष्ट मिलने वाला है आगे जाकर। इसका वास्तव में दंड तो स्त्री को ही मिलेगा, है? क्योंकि समाज में उनकी रक्षा का, उनके माता पिता तक रक्षा नहीं कर रहे हैं, फिर क्या बात की जाए। ये कलयुग का प्रभाव, माता पिता तक नहीं देखते हैं कि हमारी युवती कहाँ जा रही है, कैसे वस्त्र पहन रही है, कहाँ घूम रही है, तो फैशन है। एक बार एक घर में हम गए तो हमने कहा कि क्या अपनी बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनाते हमारी युवती, तो प्रभु जी तो कुछ नहीं बोले, माता अंदर सब पहनते हैं ना आजकल, तो ये फैशन है, सब करते हैं, सब करते हैं ऐसे, हमको भी करना है क्या? ये सब बातें आगे आ रही हैं, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा है कि भले मनुष्य को जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन मनुष्य के लिए वो नियम है, उसके अंदर रहकर, धर्म के नियम में रहकर उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, ना कि कुत्ते बिल्लियों की तरह। आज आप देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे में, बगीचों में, सभ्य व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे भद्दे वस्त्र और ऐसा भद्दा उनका आचरण, बस लड़का लड़की पकड़ कर रखते हैं, कहीं भाग जाएगा कि क्या है कि कुछ पता नहीं चलता क्या। और सरेआम अभी मैं 4 दिन पहले भाईंदर प्लेटफॉर्म पर उतर तो मैं अटक गया। इच्छा तो हुआ कि 2-4 तमाशा लगा दें, लेकिन मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। इस प्रकार का वर्तन, लेकिन देखने वाले भी देखते हैं, क्योंकि सब सबके अंदर वही कमजोर नस है। किसी को घृणा नहीं हो रहा कि ये क्या कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है। अभी हमारा ये काउंसिल चलता है तो एक प्रेस रिपोर्टर माता जी है, तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया था, ऐसा चीरहरण। मैं बोला द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ था तो ठीक है, आज तो घर में बैठे बैठे माता पिता के सामने लड़की अपना चीर फेंक कर चल जाती है तो वो तो माता पिता भी नहीं बोलते। आपने देखा कोई पुरुष सैंडो बनियान पहन के निकलता है रास्ते में, कोई पुरुष स्त्री निकलती है, कितना अभद्र व्यवहार है। आदमी नहीं निकल सकता सैंडो बनियान में और कन्या निकल, और बिल्कुल भद्दे वस्त्र। कम से कम जो इस हमारे प्रभुपाद के मूवमेंट में आए उनको तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। हम तो देखते हैं भक्तों के बच्चे भी उसी ड्रेस में जा रहे हैं, कुछ तो ध्यान। प्रभुपाद महाराज की शिष्य भले लंदन के हैं अमेरिका के हैं, हमने देखा है साड़ी में ही चलते हैं, देखा है ना आप लोगों ने, ये किसने सिखाया? प्रभुपाद महाराज ने। और हम लोग क्या सीख रहे हैं? हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं? हमारा युवा वर्ग क्या कर रहा है? देखना चाहिए। इसके पीछे ये सिद्धांत है कि अगर हमारे बच्चे भी इस प्रकार इस कलयुग के प्रभाव में बह जाएंगे तो आगे चलकर उनका भविष्य बहुत खतरे में रहेगा। इसमें दुख ही मिलेगा फैशन के नाम पर, कोई सुख मिलने वाला नहीं। आज का स्त्री वर्ग फैशन में और पुरुष वर्ग व्यसन में डूब गया, कोई नियंत्रण नहीं। विशेषकर माताओं को भी देखना चाहिए। हमने तो देखा कि प्रभुपाद जी की शिष्या जो हमारे दादी के समान है, जैसे नत्र की माता तो ओढ़ कर आती है यहाँ पर, आप सब माता जी देखती है, और उनके सामने उनके शिष्य की शिष्या है वो। आप देखा है ना, आप सब देखते हैं ना, ये कुछ संस्कार हैं, कुछ सभ्यता हैं। अगर हम वैदिक बन रहे हैं तो कुछ हमारा आचरण भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माता पृथ्वी ये व्यक्त कर रही है कि आने वाले समय में स्त्रियों का इस प्रकार शोषण होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं पढ़ के सुना सकता हूँ कि कलयुग में स्त्रियां इस प्रकार के वस्त्र पुरुषों को आकर्षण करने के लिए भद्दे वस्त्र पहनेंगी। ये माता पृथ्वी देख रही है और इसके लिए दुखी, इसमें शोषण भक्ति होगा। एक आज इसके साथ समाज में तो प्रतिबंध होता है, अगर समाज का लड़का है समाज की लड़की है तो बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। लेकिन बाहर समाज का है तो वो रखेगा छोड़ देगा, उसके लिए कौन उसको कहने वाला है? कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार ये ऐसा समय आएगा इसके लिए माता, हे माता तुम इसके लिए दुखी हो है? और आगे कहते हैं कि हे देवी, आगे चलकर जो ज्ञान है, ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में चली जाएगी। ये शास्त्र और ये ज्ञान ये सब ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में रहेगा जो अधर्म पर आचरण करते। हमको तो आश्चर्य होता है, एक व्यक्ति ने हमें पूछा कि प्रभु जी तो ये जितने भी मंदिर बनते हैं उनमें भगवान को बिठाते हैं और ब्राह्मण पूजा करते हैं, ब्राह्मण पूजा नहीं तो वो लोग नहीं बताते कि नहीं नहीं भाई ये तो भगवान का अवतार नहीं है, ये क्यों मंदिर बनाए? मैं बोला उनकी बात छोड़ो, तुम तुम्हारे दादा की मूर्ति बनाओ और बोलो कि ये हमारे भगवान है, और ब्राह्मण को बोलो 10,000 पगार तो वो पूजा चालू करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये भगवान नहीं है और ब्राह्मण, ये भी ये कहा जा रहा है। अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में चला जाएगा, ये देखकर आप दुखी हैं? ब्राह्मण ने राजकुलों का आश्रय ग्रहण करके ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। ब्राह्मण किसको कहते हैं? उसका पहला वाक्य ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब ब्रह्म को जो जानता है वो जानता है कि ये भगवान है, वो ब्राह्मण। तो फिर वो ऐसे देवों की कैसे पूजा करता है जो जनता आम जनता तो नहीं जानती है? वो तो ठीक है भोली है उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, लेकिन आप तो ब्राह्मण है ना, आप ऐसे पुजारी कहां कैसे बन गए यहां पे? जो भगवान का 24 अवतारों में नाम नहीं है, भागवतम में नाम नहीं है, किसी पुराण में नाम नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं है, कलयुग में उस अवतार का कोई जिक्र नहीं है, और ऐसे अवतार के अवतार होते जा रहे हो ब्राह्मण पूजा कर, जय जगदीश हरि, क्या जगदीश हरि? आप ब्राह्मण हो, आप तो कम से कम बताओ कि कलयुग का धर्म क्या है, कलयुग का साधन क्या है, कलयुग के आराध्य देव कौन है, शास्त्र के अनुसार बताओ, नहीं बताते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में ऐसे लोग ब्राह्मण होंगे, इसके लिए क्या आप दुखी हैं? यह है भागवतम। कलयुग में जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है उनको भागवत दृष्टि प्रदान करता है, ये दृष्टि प्रदान करता है, ये स्पष्ट लिखे। जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण की संस्कृति का आदर नहीं, होटल में चाय पी लेते हैं, कुछ भी तंबाकू खा लेते हैं, वो कर लेते हैं। हम तो छोटे थे, आप भी गांव में जो रहते हैं छोटे, आपने देखा होगा, मैं बात कर जो सत्य बात कहता हूं, हमारा जो कुल है वो भी लगभग ब्राह्मण के बराबर होता था, लेकिन जो समाज के वास्तविक ब्राह्मण है वो ब्राह्मण जब हमारे घर आते थे तो हमारे घर किसी के भी घर का, किसी भी के घर का ब्राह्मण पानी नहीं पीता था, और उसके घर का खाना भी नहीं खाते थे ब्राह्मण। हम छोटे थे, हमने देखा है, हम उसको कच्चा पेटिया कहते थे, मालूम है, आटा घी गुड़ और दाल एक थाली में भर के देते थे, अगर बाहर गांव से आया तो वो हाथ से कुएं से पानी लाता था, वो अपने हाथ से बनाता था, भगवान को भोग लगा के खाता था, किसी के घर का बना हुआ नहीं खाता था, और वो ब्राह्मण आज होटलों में चाय पी लेते हैं, कहां है ब्राह्मण? इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी संस्था में ब्राह्मणों को पैदा किया, ब्राह्मण बनाया। चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशत, गुण और कर्म से जात विभाग है, जाति से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर पढ़ा नहीं किया नहीं तो मार डालेगा आदमी को। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ठीक है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता है तो वो कैसा ब्राह्मण है? उसके अंदर ब्राह्मण का गुण, इसलिए प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण, प्रभुपाद जी ब्राह्मण यहाँ पर बनाते, बेहतर फैक्ट्री है प्रभुपाद जी ब्राह्मण बनाने, यहाँ पर असली ब्राह्मण है, ये श्रीनाथ जी ब्राह्मण थे लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण दीक्षा लिया, अब मैं ब्राह्मण हूँ, अब ब्राह्मण हूँ, ये भी पुरोहित है लेकिन अब, और अब ब्राह्मण बने और अब गांव में जाकर सही सही शिक्षा देते हैं लोगों को, कहते हैं ये धर्म है, हरिनाम करो, ये पूजा करो, भगवान का नाम लो, ये नशा छोड़ो, ये सब बताते हैं। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, लेकिन ये प्रभुपाद जी ने जो ब्राह्मण बनाया वो ब्राह्मण देखिए, अब असली ब्राह्मण भी है। तो इस प्रकार माता, हे माता आप इसलिए दुखी हैं, समय पर भी बहुत थोड़ा और आगे करते हैं, या आप इसके लिए दुखी हैं कि कलयुग में प्रशासक जो होगा उनका कोई व्यवस्था नहीं होगा, राजा ऐसे होंगे कि उनकी कुव्यवस्था होगी जिससे जनता परेशान हो जाएगी। कितना सत्य सत्य बात है, आज के प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें व्यवस्था के बारे में, जब महाराज परीक्षित ने ऐसा देखा वो बैल के तीन पांव कटे हुए, तो महाराज परीक्षित ने तलवार निकाला और कहा कि मुझको बताओ कि आपके ये तीन पांव किसने काटे हैं, जो कुरुवंश की परंपरा रही है, जो कुरुवंश में राजा हुए हैं उनके राज्य काल में कोई पशु भी दुखी नहीं हो सकता, अगर आपकी ये दशा किसी देवता ने की है तो मैं उसको भी दंड दूंगा। ये थे राजा, यहां तो आदमी का मर्डर हो जाता है कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने देखा है हमारे परिवार में हमारे एक भांजे का मर्डर हो गया था, आज तक उसमें से किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया, और इतना दयनीय स्थिति में 20 साल के लड़के को मारा गया, हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसको जला भी दिया गया। आप देखते हैं सुरेश जो आता है उसका बड़ा भाई, सुरेश जो आता है डोमी से, तो उसका स्टोरी तो सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। इसला हत्या की गई, हत्या के बाद तालाब में डाल दिया गया, उसका शरीर पूरा खराब हो गया और जला भी दिया गया, घर वालों को पता तक नहीं, ढूंढते रह गए हमारा लड़का था। और ऐसे निर्हत्या करने वाले दुष्ट लोगों को भी कुछ भी कोई पकड़ा नहीं गया, कोई दंड नहीं है, कुछ भी नहीं, ये शासन है। लेकिन राजा का कर्तव्य होता था कि एक कुत्ते को भी है, भगवान राम के राज्य में एक कुत्ता रस्ते में बैठा था, तो उस कुत्ते को एक व्यक्ति ने लात मार दिया या डंडा मार दिया, वो कुत्ता भौंकता भौंकता भगवान राज के सभा में गया, राजभवन में गया, तो कुत्ता भौंक रहा था, भगवान समझ गए कि इसका कुछ शिकायत है। पहले के लोग जानवरों की भाषा जानते थे, आप लोग को आश्चर्य होगा, कुछ लोग ऐसी बात सुनते हैं तो ये मैथोलॉजी नहीं है, पहले के लोग जानवरों की, आपको पता है पहले के समय में पोस्टमैन का काम कबूतर करते थे, पता है किसी को? कबूतर के गले में लेटर एड्रेस देके बांध दिया जाता था, वो एड्रेस लेके कबूतर जाता था यहाँ से अहमदाबाद दिल्ली या कहीं, और वो कबूतर जाके उनके घर वो चिट्ठी देता था। ये तो आपने शायद सुना होगा है? तो इस प्रकार पहले के जानवर भी आदमी की भाषा जानते थे और आदमी जानवरों की भाषा शिकायत समझते थे। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसको पता चल गया कि इनके पीछे इनके शत्रु पड़े हैं और इनको बचाना है, अपने प्राण देकर उसने महाराणा प्रताप को बचा लिया। ये जानवर ऐसे होते थे। तो वो कुत्ता था भौंकता हुआ राम के दरबार में आया, तो भगवान राम ने कहा कि इसका कुछ शिकायत है, मंत्री से कहा कहो पूछो उसको क्या शिकायत है, तो वो कहा कि वो एक व्यक्ति है जो मैं तो सीधा बैठा था वो डंडा मारा उनको। ये देखिए राजा कैसे होते हैं। आज तो आपको कोई इधर चार गुंडे आ जाएं दाऊद के और मार के चले जाएं तो आपका कोई सुनवाई नहीं करेगा, आपको चुप रहना पड़ेगा, पुलिस भी शिकायत नहीं लेगी। लेकिन उस समय राजा का क्या कर्तव्य, भगवान राम ने कहा इसका शिकायत सुनो क्या है, तो कुत्ते ने कहा कि हमको, मैं रस्ते में बैठा हमको लाठी मारा। बोला कौन मारा, ढूंढ के लाओ। कुत्ता गया उसको ढूंढ के लाया, बोला तू, उसको बोला आपने लाठी मारा क्यों मारा, ऐसे रस्ते में बैठा, रस्ते में बैठा तो कुत्ता का काम फ्लैट है जो वहाँ जाकर बैठेगा, वो तो रस्ते में बैठेगा ना है? कुछ बातें हैं जो हमको समझना चाहिए, कुछ बातों में भक्तों को भी, कुछ भक्त होते हैं तो मच्छर बैठा ठट से मार देते हैं, वो बेचारा भगवान ने उसका वो व्रति बनाया है ना, भगवान ने मच्छर के लिए खाने के लिए, किसने, मच्छर ने बनाया या भगवान ने बनाया, उसको उड़ा सकते, मारना नहीं चाहिए। कम से कम हम भगवान को मानते हैं तो उनके रूल्स को भी फॉलो तो करें ना, उसको उड़ा सकते हैं या कोई दवा लगाएं कि बैठे नहीं वो ठीक है, लेकिन मार दोगे आप तो कुत्ता रस्ते में बैठा तो बेचारा रस्ते में ही बैठेगा ना, वो बैठा तो बोला इसने लाठी नहीं, बोला इसको दंड देना पड़ेगा। तो कुत्ते से ही पूछा कि ये तो बहुत ही विचित्र केस है, अब इसको क्या सजा दिया जाए, तो कुत्ते से पूछा तो कुत्ते ने कहा कि ऐसा करो इसको मठाधीश बना दो, प्रेसिडेंट बना दो। तो भगवान राम और सब मंत्री आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसा, ये सजा है कि इनाम है, ऐसा कैसा सजा है, तुमको लाठी मारा और तुम बहते इसको मठाधीश बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, प्रेसिडेंट नहीं मठाधीश, उस समय प्रेसिडेंट नहीं होते थे। तो कुत्ते से पूछा गया कि तुम्हें यह क्या बता, बोला पूर्व जन्म में मैं भी मठाधीश था इसलिए मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। प्रभुपाद जी को एक ज्योतिष ने बताया कि भारत का एक प्रधानमंत्री था जो लंदन में जाकर कुत्ता बना, एक ज्योतिष ने बताया प्रभुपाद जी को, हम नाम नहीं देना चाहते वो कौन प्रधानमंत्री था, तो बता दे। मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसी राज्य की व्यवस्था होती है जहाँ पशुओं को भी कष्ट नहीं होता, लेकिन हे माता तुम इसलिए दुखी हो कि आने वाले समय में राजा की कोई व्यवस्था प्रशासन नहीं होगी, प्रजा हमेशा दुखी रहेगी, भयभीत रहेगी, कर बेशुमार लगाए जाएंगे, रक्षा के लिए कोई नहीं, कोई डाउट डाउन बन गया तो वो किसी का मर्डर कर सकता है, कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसा प्रशासन, क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? क्या भागवतम में भविष्यवाणी है, जनता के खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं करती और वह सारे कार्य कहीं भी कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है, क्या आप उसके लिए प्रसन्न हैं? क्या क्या बात लिखा गया है, प्रजा जो है अब कलयुग आएगा और उसमें ना कोई खाने पाने पीने का विचार, कहाँ खाना चाहिए क्या खाना चाहिए उस पर कोई विचार नहीं, और ना खाने पीने सोने और सहवास करने, स्त्री के साथ कैसे चलना चाहिए है? स्त्री चल रही तो पुरुष को कहाँ चलना चाहिए, पुरुष चल रहा है तो स्त्री को कहाँ चलना चाहिए, ये यही सब बातें हैं इसका। पुरुष आगे चलता है, स्त्री पीछे चलती है, साथ साथ में हाथ पकड़ कर रस्ते में नहीं चला जाता है, है? हमारे से बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो पुरुष के साथ किस तरह का सभ्यता में बात करना चाहिए, ये सब विधान है। हम लोग रामायण में जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उस समय माता कौशल्या से राम बात कर रहे थे और सीता जी भी वहां खड़ी थी, तो सीता जी भी राम के साथ जाना चाहती थी, लेकिन कौशल्या जी हैं, अब सीता जी कैसे बोले? रामायण सब सुनते हैं, ये देखिए माताओं के लिए, सीता जी को राम के साथ कहना है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, लेकिन कौशल्या जी खड़ी थी इसलिए सीता जी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब कहा कि अब सीता जी ने अब रहा नहीं जाएगा, इसलिए पहले सीता जी ने कौशल्या जी से क्षमा मांगा कि हे माता मैं गुस्ताखी कर रही हूं, आप मुझे क्षमा करेंगे कि आपकी उपस्थिति में इनसे बात कर रही हूं, ये बहुत बड़ा अपराध मैं कर रही हूं, लेकिन आप क्षमा करेंगे, अब मुझे इनको बताना ही पड़ेगा। और उसके बाद कौशल्या जी से क्षमा मांगकर, अनुमति मांगकर फिर भगवान राम से उन्होंने बात किया मर्यादा। बड़ा बात पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातों को छोड़ दें, लेकिन छोटी छोटी बातें ही संस्कृति में आती हैं। तो यही शोक करने की, कोई विधि विधानों का पालन नहीं करेगा और कोई खाने पीने का, रहन सहन का, सहवास का, सहवास का अर्थ है, रूपा जी तो बहुत तात्पर्य में लिखे हैं, चारित्रिक नियमों का पतन निश्चय ही शोचनीय है। रूपा जी चारित्रिक विषयों का, चारित्रिक मतलब आदमी का चरित्र उज्जवल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि युवती पढ़ गई है तो बस अब वो फ्री है। हाँ कुछ लोग कहते अरे तुम पढ़ी लिखी हो क्या ऊपर ओढ़ती हो, साड़ी क्या पहनती हो, जींस पहन, अरे पढ़ी लिखी है तो चरित्र क्या घटिया हो गया, और अच्छा चरित्र होना चाहिए और उसमें संस्कार होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो गया तो बोला बिल्कुल नंगा हो जाओ घूमो, ऐसा पढ़ा लिखा का व्यवहार थोड़ा ही है बहुत रूपा जी लिखे। तो इसलिए कि आने वाले समय में समाज में कोई आचरण नहीं होगा, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, रास्ते में कैसे चलना चाहिए, स्त्री पुरुष है तो उनके साथ कैसे बैठना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, इसका कोई आचरण नहीं होगा, इसलिए आप दुखी हैं। मतलब हमारी संस्कृति धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, इसलिए क्या मात्र दुखी है, इसके कारण आप अप्रसन्न हैं। पूरा तो नहीं होगा कि अब मूल बात पर आ रहे हैं, अब 5 मिनट कहते मैं पूरा करूँगा, क्यों इस श्लोक पर तो नहीं आई, इच्छा तो था कि लेकिन उसको फिर कभी पूरा करेंगे। यदा अम्ब ते भूरी भरा अवतार, हे अम्ब हे माता, अम्ब अम्ब का अर्थ होता है माता है, यदा अम्ब ते भूरी भरा अवतार कृता अवतार से हरे धोरी धोरित्री अंतरहितस्य समरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण अविलंबितानि। भगवान कृष्णा आपके भार को हरण करने के लिए अवतरित हुए थे, तुम्हारे बोझ को उतारने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित हुए थे, और जब वो स्वयं आपके यहाँ उपस्थित थी तो तुम बड़ी सुखी थी, लेकिन अब वो चले गए तो शायद आप उनकी अनुपस्थिति में, उनके विरह में और उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके विरह में आप दुखी लगती, ये मूल कारण। ये सब हुआ है क्योंकि भगवान आते हैं और जो धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो उनको दंड देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, फिर लोग विधि विधानों का पालन करने लगते हैं और भगवान विचरण करते हैं तो माता पृथ्वी बहुत सुखी रहती है। और उसके पीछे दूसरा कारण है कि माता पृथ्वी भी भगवान कृष्ण की कृपा से जगत का पालन करने में समर्थ है। एक जो माता होती है वो अपने बच्चों का पालन करती है लेकिन वो पति के प्रभाव से, पति अगर जीवित होता है परिवार में होता है तो माँ ठीक से बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, अगर पति का सहयोग ना हो तो माँ के लिए बच्चों का ठीक से पालन पोषण करना मुश्किल हो जाता है। तो पिता जो पृथ्वी को विष्णु पत्नी कहा जाता है, तो आप पति मतलब भगवान कृष्ण यहाँ पर थे, धर्म का आचरण होता था, धर्म पालन करने वालों को दंडित करते थे और आपके भार को कम किया, उस समय आप प्रसन्न थी और समर्थ थे, लेकिन अब वो प्रभु चले गए, लगता है आपके दुख का कारण ये है। हे माता वसुंधरे, हे नविता, हे वसुंधरा, हे सभी धन की खान, कृपया मुझे आपके कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप दुर्बल हो गई हैं। देवताओं के द्वारा भी अर्चनीय, सुअर्चितम किम हता अम्ब सोभगम, कालेन वाते बलिना बलियशा, काल के द्वारा बड़े बड़े बलवानों का बल छीन लिया जाता है, काल इतना समर्थ है कि बड़े बड़े बलवानों का बल छीन लेता है, उस काल के द्वारा आपका भी सौभाग्य छीन लिया गया है। सुरा अर्चितम, गायक को देख, सुरा अर्चितम, हे देवताओं के द्वारा पूजनीय, किम हतम सोभगम, आप इतनी हत प्रभ क्यों, कृपा करके हमको बताइए। तब आज का जो श्लोक लिया वो माता पृथ्वी ने उत्तर दिया कि हे भवान ही वेद तत सर्व, हे प्रभु, हे धर्म के साक्षात धर्मदेव, भवान ही आप जान जाएंगे, आप भवान का मतलब आप ही वेद तत सर्व, आपने जो जो पूछा है वो सब कुछ आप जान जाएंगे, यन्मान धर्म अनु, हे धर्म के देवता, आपने जो जो पूछा है वो सब आप जान जाएंगे, मैं आपको सब बताऊंगी, क्योंकि आपके आचरण से ही, आपके अनुकूल रह के ही ये जनता सुखी रहती है, आप साक्षात धर्म है, साक्षात धर्म है, मतलब आप चार पांव पे जब खड़े रहते हैं, सतयुग में आप चतुर पांव पे रहते हैं, कलयुग में इसका फिर धीरे धीरे क्षति आता जाता है, हैं धर्म में लोगों की कमी आ जाती है तो 25% कमी आ जाती है, फिर द्वापर में 50% कमी आ जाती है, और कलयुग में तीन भाग धर्म में 75% धर्म क्षीण हो जाता है, 25% ही धर्म रहता है, एक पाद का अर्थ ये है। तो जब 25% ही धर्म रहता है तो जनता सुखी नहीं हो सकती, बहुत कम लोग ही सुखी रहते हैं जो धर्म का आचरण करते हैं। दूसरा ये अर्थ है कि जो धर्म के चार नियम हैं, दया, सत्य, पवित्रता और तप, ये चार धर्म के नियम हैं, ये चार धर्म के चरण हैं, जो इस्कॉन में चार नियम है इस पर आधारित हैं, ये इस्कॉन के नियम नहीं है, ये धर्म के नियम हैं, दया, सत्य, सोचम और तप। जो मांसाहार करते हैं, पहला चरण खंडित हुआ, दया नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा चरण है तप, जो व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, तप नहीं कर सकते, तो दूसरा धर्म का चरण खंडित होता है। तीसरा पवित्रता, जो अवैध संबंध रखते हैं वो पवित्र नहीं माने जाते, तो ये धर्म का तीसरा चरण खंडित होता है। चौथा है तप, नहीं चौथा सत्य, जो जुगाड़ खेलते हैं वो सत्य पर नहीं टिक रहते। तो इस प्रकार ये धर्म के चार चरण, ये चार चरण का संयोग में ठीक ठीक पालन किया जाता है। रेता युग में और पंचोत्तर तक का लोग इसका पालन नहीं करते, नशेड़ी हो जाते हैं, व्यसनी हो जाते हैं, जुगारी हो जाते हैं, इसलिए ये धर्म आपका जो पालन नहीं होता है नहीं रहती है, इसलिए ये धर्म का आचरण करने वाले मैं आपसे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और उत्तर लेते ही माता पृथ्वी कहती है, जिसका भाव चार श्लोकों में है, वो भगवान का स्वाद निश्चित प्रभु हमारे चले गए हैं, उनका स्मरण करके ही मेरे दुख का कारण है, हमारे प्रभु उनसे दुख दूर चले गए और उनके वियोग में मैं दुखी हुआ, उनका स्मरण करते हुए। तो भगवान का स्मरण करना अर्थात भगवान की दया करना, इसलिए खाली मैं श्लोक का श्लोक का उच्चारण करता हूँ। सत्यं सोचं दया शांति त्याग संतोष आजवं शमो दमो तप शाम्योपति सुतं ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्य शौर्य तेजो बलो स्मृति सुतं प्रिय कौशलं कांति धैर्य मातेर्मदीरचं।